हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज मेरी उससे मीटिंग करवा दो। अब ये सुनकर झलक उसे मना करना चाहती थी, लेकिन उसे याद आया कि मीरा ने तो उसे कितने सारे पैसे देने का वादा किया है, और पैसों के लिए तो झलक कुछ भी करने के लिए तैयार रहती थी। फिलहाल वो बोली, ठीक है, तो ये बताओ तुम क्या आज शाम को जब सूरज ढलेगा वो सिद्धार्थ के साथ देखना पसंद करोगी? क्योंकि पहाड़ी पर सूरज ढलता हुआ यानी सनसेट बड़ा ही प्यारा लगता है। ये सुनकर मीरा की आंखों में चमक आ गई थी और बोली, क्या वाकई तुम मेरी मदद करोगी? तब झलक बोली, मैं ठीक आधे घंटे बाद पहाड़ी की तरफ चलूंगी, ठीक है? और तुम सिद्धार्थ को बता देना कि मैं पहाड़ी पर उसका इंतजार कर रही हूँ, उसे उसकी मदद चाहिए, ठीक है? और जैसे ही मैं सिद्धार्थ को और तुम्हें पहाड़ी पर चढ़ते हुए देखूंगी, मैं दूसरे साइड से नीचे उतरकर आ जाऊंगी, तो तुम दोनों अकेले एक साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। अब जैसे ही झलक ने ये प्लान बनाया, मीरा तो खुशी से उछलने लगी थी और वो बेसब्री से अब बस सिद्धार्थ के साथ उसे पहाड़ी पर सनसेट देखने का प्रोग्राम सेट करने लगी थी। फिलहाल झलक अभी आज काफी थक चुकी थी, लेकिन क्योंकि उसने मीरा से वादा कर दिया था कि वो सिद्धार्थ के साथ उसकी मीटिंग फिक्स करवाएगी, तो इसीलिए उसने अब धीरे धीरे पहाड़ चढ़ना शुरू कर दिया था। क्योंकि गांव पहाड़ी के नीचे तलहटी में बसा हुआ था, तो पहाड़ी पर चढ़कर वो सनसेट देख सकते थे। फिलहाल झलक जल्दी से पहाड़ चढ़ने लगी थी और पहाड़ी पर पहुंचकर चारों तरफ से कुछ कुछ पहाड़, गांव सब दिखाई दे रहे थे जो बड़े ही प्यारे और खूबसूरत लग रहे थे। फिलहाल झलक के 10 मिनट जाने के बाद मीरा ने तुरंत सिद्धार्थ से बोला था कि झलक उसका पहाड़ी पर इंतजार कर रही है, उसे उसकी कुछ मदद चाहिए। अब ये सुनकर सिद्धार्थ ने अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया था। उसे हैरानी हुई कि आखिरकार ये लड़की करना क्या चाह रही है, क्यों बेवजह पहाड़ी पर चढ़ गई है। फिलहाल सिद्धार्थ अब जल्दी से पहाड़ी की तरफ जाने लगा था, लेकिन मीरा उसके पीछे पीछे चल रही थी। तब सिद्धार्थ ने उसे घूर कर देखा और पूछा, मीरा तुम मेरे साथ क्यों आ रही हो? तब मीरा सिद्धार्थ से बोली, वो झलक ने मुझे भी बुलाया है। तब मीरा सिद्धार्थ के साथ साथ चलने लगी थी। फिलहाल वहीं उन दोनों को दूर से आते हुए झलक ने देख लिया था और फटाफट से वो दूसरी साइड से पहाड़ से नीचे उतरने लगी थी। और जैसे ही वो नीचे उतरने लगी, अचानक वो किसी से टकरा गई। वो कोई और नहीं बल्कि वही नकाबपोश आदमी था जिसकी उम्र कुछ ज्यादा नहीं थी, कम ही थी, लेकिन फिर भी बीमारी की वजह से वो बूढ़ा सा लगता था। तब झलक ने जल्दी से उसे संभाला था और बोली, आई एम सो सॉरी, आप ठीक है ना, मेरी वजह से आपको लग गई? तो वो आदमी बोला, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। तब झलक बोली, आपको अकेला रहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि झलक को उसके लिए बहुत ही ज्यादा हमदर्दी महसूस हो रही थी। एक तो वो झुककर चल रहा था और उसे सर पर मास्क लगाए हुआ था जिसकी वजह से वो अपना चेहरा नहीं दिखा रहा था, तो झलक को उसके लिए अजीब सी सहानुभूति हो रही थी और वो उसकी मदद करना चाहती थी। और वो उससे बोली, मैं आपके गाँव में गाँव वालों की तरह आपकी मदद करना चाहती हूँ, बताइए आपको क्या चाहिए, मैं आपकी पूरी तरह से मदद करूँगी। तो वो आदमी अपनी आंखों में चमक लिए उसे वक्त झलक को घूरता रहा था। फिलहाल वो अब बातें करते करते धीरे धीरे नीचे उतरने लगे थे। झलक ने साथ में कहा था और बोली थी कि मैं आपको पहाड़ उतरने में मदद कर देती हूँ, वैसे भी पहाड़ी इलाका आपके लिए ठीक नहीं है, तो आपको इस पर नहीं चढ़ना चाहिए था। बदले में वो चुपचाप झलक की बातें सुनता रहा और उसने उसे कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर नीचे उतरने के बाद अचानक झलक को लगा कि वो आदमी काफी ज्यादा थक गया है और वो नीचे नहीं चल पा रहा है, तो थोड़ा सा वो एक जगह रुककर आराम करने लगे। तब उसे आदमी ने अपने कपड़ों में एक चमकदार खंजर छुपाया हुआ था जो कि चाकू की धार काफी ज्यादा तेज थी, जो किसी की भी गर्दन एक मिनट में उड़ा सकती थी। उसे वक्त वो आदमी हाथ में चाकू थामकर झलक को देख रहा था, इसका मतलब साफ था कि वो वहां झलक को मारने के इरादे से आया था। अब झलक जो उसे पूरी तरह से मदद करना चाहती थी, अचानक झलक ने उस आदमी को धक्का दे दिया। अब तो उस आदमी का खून खौल उठा और उसे ये यकीन हो गया कि शायद झलक को उस पर शक हो गया है। लेकिन इससे पहले कि वो मुड़कर झलक पर खंजर से वार करता, ठीक उसी वक्त उसने देखा कि झलक के हाथों पर दो जगह खून के निशान मौजूद थे। ये देखकर वो आदमी चौंक गया। तब झलक जल्दी से बोली, मुझे जहरीले सांप ने काट लिया है, वो सांप आपको काटने वाला था, तो इसीलिए मुझे आपको धक्का देना पड़ा, लेकिन उसने मुझे काट लिया। अब ये सुनकर उस आदमी के माथे पर बल पड़ गए और वो समझ गया कि शायद इस लड़की ने उसकी जान बचाने के लिए उसे धक्का दिया था। तब झलक बोली, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, मुझे जहर को चूसना होगा, ये बहुत ही ज्यादा जहरीला सांप है। ये बोलकर झलक अपना खून चूसने लगी थी, क्योंकि उसके हाथ पर जहरीले सांप ने काटा था। फिलहाल वो आदमी झलक को बिना किसी भावना के देखता रहा। तब झलक बोली, मुझे जल्दी जल्दी से नीचे जाना होगा और जल्दी से कुछ चाकू लेकर इस जहर को काटना होगा, तभी इसका जहरीला खून निकलेगा। अब झलक ये बोलकर जैसे ही नीचे जाने लगी, वो आदमी बोला, तो मैं क्यों जाऊं, चाकू तो मेरे पास है। ये सुनकर झलक चौंक कर बोली, तुम्हारे पास चाकू? लेकिन तुम्हारे पास चाकू क्यों है? वो आदमी मन में बोला, तुम्हारी गर्दन उड़ाने के लिए था। फिर वो खुद को संभाल कर बोला, यहाँ पर जंगली जानवरों का खतरा रहता है, तो मैं चाकू हमेशा अपने साथ रखता हूँ। अब ये सुनकर झलक के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आई, फटाफट से उसके हाथ से चमचमाता चाकू ले लिया और अपने हाथ पर कट लगा दिया और अब उस जहरीले खून को निकालने का इंतजार करने लगी थी। लेकिन ज्यादा खून बहने की वजह से झलक की आंखें बंद होने लगी थी और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। अब वो आदमी चमकदार चाकू लेकर झलक की तरफ बढ़ने लगा था, क्योंकि वो अब झलक को मार देना चाहता था। लेकिन फिर न जाने क्या सोचा, वो झलक के चेहरे पर एक उंगली फेर कर बोला, अब मैं देखता हूँ, तुमने मेरी जान बचाकर एक एहसान किया है, मैं देखता हूँ कि तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है, आज मैं तुम्हें किस्मत पर छोड़ देता हूँ। और वो वहाँ से सीधा नीचे उतर गया था।
वहीं दूसरी ओर अब पहाड़ी पर सिद्धार्थ खुराना और मीरा रायचंद पहुंच गए थे, लेकिन उन्हें झलक कहीं भी दिखाई नहीं दी और 15-20 मिनट इंतजार करने के बाद वहां से वो वापस उतर गए थे। वहीं झलक के सनसेट देखने का मौका मीरा को मिल चुका था, तो वो काफी ज्यादा खुश थी। जैसे ही वो नीचे आए, उन्होंने देखा कि सभी अपने अपने काम में लग गए थे। सिद्धार्थ उस वक्त गाँव के लोगों को कुछ सामान दे रहा था, तो झलक का उसे ध्यान नहीं आया। लेकिन जब झलक गई, उसे 2-3 घंटे से ज्यादा हो गया था, तब मीरा थोड़ी चिंता में डूब गई और सीधा सिद्धार्थ के पास पहुंच गई और बोली थी, मिस्टर खुराना, झलक का कुछ पता नहीं चल रहा है, प्लीज। जैसे ही अचानक से मीरा ने ये कहा, सिद्धार्थ को ऐसा लगा मानो उसकी सांसें थम गई हों और फटाफट से उसने घोषणा की, गांव वालों के साथ मिलकर झलक को खोजना शुरू कर दिया जाए, क्योंकि लास्ट टाइम झलक पहाड़ी पर ही गई थी, अब गांव वालों के साथ मिलकर वे लोग झलक को ढूंढने लगे थे, लेकिन झलक का कहीं भी पता नहीं मिला। लेकिन तभी एक छोटे से 12 साल के बच्चे ने झलक को दूसरी साइड की पहाड़ी पर नीचे की तरफ दिखाई दी थी और फटाफट उसे उसके गांव वालों को बता दिया था। सिद्धार्थ ने जैसे ही झलक को देखा, उसके हाथ पर सांप के डसने का निशान और झलक का पीला पड़ा हुआ चेहरा देखा, तो सिद्धार्थ का दिल बैठ सा गया था। फटाफट उसे उठाकर मुखिया के घर ले आया और जहां पर उसका इलाज किया जाने लगा था। अभी झलक की हालत काफी खराब थी।